डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट साहित्य, व्याख्यान 15, रोमन और परिचय, 1 कुरिन्थियों को, 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह है डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर, लेक्चर 15, रोमन्स एंड द इंट्रोडक्शन टू 1 कोरिंथियंस। ठीक है, पिछले हफ्ते हमने रोमनों को समग्र रूप से पढ़ने के तरीके और रोमनों का मुख्य विषय या संदेश क्या है, इस बारे में थोड़ी सी बात करके समाप्त किया था, और मैंने सुझाव दिया था कि शायद जिसे अक्सर पुराना और पुराना कहा जाता है, उसका एक संयोजन हो। नया परिप्रेक्ष्य। पुराना परिप्रेक्ष्य यह है कि रोमन इस बारे में बात करते हैं कि व्यक्तियों को कैसे बचाया जाता है, या वे पवित्र ईश्वर के सामने कैसे खड़े होते हैं, जबकि नया परिप्रेक्ष्य कहता है, नहीं, मुख्य मुद्दा यह है कि यहूदी और अन्य जाति एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है। परमेश्वर के लोगों का ध्यान अधिक क्षैतिज था। मैंने सुझाव दिया कि संभवतः रोमनों की तरह पुस्तक में दोनों सच हैं, कि पॉल यहूदी गैर यहूदी संबंधों के मुद्दे में रुचि रखते हैं, जो भगवान के लोगों से संबंधित हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या अन्य जातियों को मूसा के कानून के प्रति समर्पण करना चाहिए या क्या वे भगवान के हो सकते हैं, उससे अलग लोग। और यद्यपि यह एक व्यापक मुद्दे से संबंधित है और उठाता है कि फिर किस आधार पर कोई ईश्वर के साथ संबंध बनाता है या किस आधार पर उसे बचाया जाता है और किस आधार पर वह पवित्र ईश्वर के सामने खड़ा होता है, यही वह प्रश्न है जिसे मार्टिन लूथर उठा रहे थे। लेकिन मैं रोमनों की पुस्तक के कुछ खंडों पर थोड़ा और विस्तार से गौर करना शुरू करना चाहता हूँ, और सबसे पहले यह ध्यान देना चाहता हूँ कि पुस्तक एक अर्थ में कैसे स्थापित की गई है और यह कैसे अपनी बात पर बहस करती है। सबसे पहले यह है, पॉल के तर्क को उस शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है जिसे कुछ लोगों ने निदान कहा है, जिसे पॉल पहले 3 अध्यायों में प्रदर्शित करता है, या मूल रूप से पॉल पूरी मानवता, यहूदी और गैर यहूदी दोनों पर आरोप लगाता है। मुझे वास्तव में इसे दूसरे तरीके से कहना चाहिए, गैर यहूदी और यहूदी, क्योंकि अधिकांश पाठक, विशेष रूप से यहूदी पाठक, गैर यहूदी के बारे में पॉल के आरोप और निंदा पर आश्चर्यचकित नहीं हुए होंगे, लेकिन जब पॉल यहूदियों के पास भी जाता है और कहता है कि वे भी हैं दोषी हैं क्योंकि उन्होंने कानून की अवज्ञा की है, अधिकांश को शायद इस पर आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन मोटे तौर पर पहले 3 अध्यायों में पॉल जो करता है वह अन्य जातियों और यहूदियों दोनों पर पाप के तहत दोषी ठहराए जाने का आरोप लगाता है, और इसका कारण यह है कि दोनों कानून की अवज्ञा करते हैं, और विशेष रूप से यहूदी मूसा के कानून की अवज्ञा करते हैं, लेकिन अवज्ञा के कारण सभी निंदा की जाएगी। लेकिन निदान फिर पूर्वानुमान की ओर ले जाता है, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है, क्या ईश्वर ने इस समस्या का समाधान करने और धार्मिकता की पेशकश करके इस समस्या को ठीक करने के लिए कार्य किया है। हम उस शब्द धार्मिकता या उचित औचित्य के बारे में बस एक क्षण में अधिक बात करेंगे, लेकिन धार्मिकता की पेशकश करके जो केवल यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध है। तो जल विभाजक का प्रकार, यह वास्तव में अध्याय 3 श्लोक 21 होना चाहिए, यह वास्तव में उनमें से 21 में से एक है, कम से कम विषयगत रूप से पत्र में विभाजन रेखाओं में से एक, जहां पॉल समस्या का निदान करने या पूरी मानवता पर आरोप लगाने से अब तक आगे बढ़ता है पाप के कारण उस कठिन परिस्थिति का समाधान प्रस्तुत करना। इसलिए सभी पाप के अधीन हैं क्योंकि सभी अवज्ञाकारी हैं और सभी पाप के गुलाम हैं, यहाँ तक कि यहूदी भी, न कि केवल अन्य जाति, और इसलिए सभी को इस धार्मिकता की आवश्यकता है जो केवल यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से आती है। अब इसे स्पष्ट करने के लिए, उन मुद्दों में से एक को संबोधित करने के लिए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह स्पष्ट करने के लिए कि पॉल कुछ एंटीनोमियन नहीं है, यानी कि पॉल सोचता है कि यीशु मसीह में विश्वास ही पर्याप्त है और उसके बाद कोई क्या करता है वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है, या कि यीशु मसीह के प्रति किसी की आज्ञाकारिता वास्तव में मसीह में किसी के विश्वास से आकस्मिक या असंबंधित है। और आज बहुत से ईसाइयों में ईसा मसीह में अपने विश्वास को त्यागने और बाद में जो करते हैं उसके लिए ईसाई बनने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे कि हम जो बाद में करते हैं उसका ईसाई बनने या ईसा मसीह में विश्वास करने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन पॉल का अनुमान है कि शायद पूर्वानुमान खंड में अपने तर्क में जब पॉल प्रदर्शित करता है कि धार्मिकता है यह औचित्य या भगवान के सामने सही स्थिति है जो यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से आती है। इसके बीच में अध्याय 6 में पॉल वास्तव में उसी सोच पर एक संभावित आपत्ति की आशंका जताता है। ठीक है, अगर हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा न्याय संगत हैं तो कोई भी बात की गतिविधि या कोई भी बात की आज्ञाकारिता वास्तव में सारहीन या अप्रासंगिक है। या क्या पॉल की यह शिक्षा कि हम केवल विश्वास के द्वारा उचित ठहराए जाते हैं का अनिवार्य रूप से यह मतलब है कि किसी कानून या किसी कानून का पालन करने में कोई भूमिका नहीं निभाती? पौलुस इसकी आशा करता है और अध्याय 6 में कहता है, वह कहता है, तो फिर हम क्या कहें? क्या हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह प्रचुर मात्रा में हो? इसलिए यदि हम केवल ईश्वर की कृपा से और विश्वास के माध्यम से बचाए गए हैं तो वास्तव में पाप के कारण ईश्वर की कृपा और भी अधिक बढ़नी चाहिए। लेकिन पॉल कहते हैं, किसी भी तरह से या आपके कुछ अनुवाद यह नहीं कह सकते हैं, भगवान न करे हम जो पाप के लिए मर जाते हैं वे उसमें कैसे रह सकते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? इसलिए हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेकर उसके साथ गाड़े गए कि जैसे मसीह मरे हुओं में से पिता की महिमा के लिए जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालांकि पॉल ने अंत में जो कहा वह यह है कि यह धार्मिकता जो केवल विश्वास से आती है महत्वहीन है यदि यह नए जीवन में जारी नहीं होती है, क्योंकि मसीह में विश्वास के आधार पर पॉल कहते हैं हम किसी तरह से मसीह से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि हम उसकी मृत्यु पाप की मृत्यु में भाग लेते हैं लेकिन हम उसके पुनरुत्थान में भी भाग लेते हैं जो एक पुनरुत्थान है जो हमें जीवन की एक नई गुणवत्ता में चलने में सक्षम बनाता है। तो पॉल का यह कहना बिल्कुल असंगत है और ऐसा भी नहीं है, यह अकल्पनीय है कि कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास के द्वारा इस धार्मिकता का अनुभव करेगा फिर भी एक नया जीवन या परिवर्तित जीवन नहीं जिएगा। इसलिए पॉल ने अपने पूरे पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि अच्छे कार्य एक भूमिका निभाते हैं और अच्छे कार्य स्पष्ट रूप से किसी को ईश्वर के लोगों के रूप में चिन्हित करते हैं। अच्छे कार्य यीशु मसीह में किसी के विश्वास की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी ने वास्तव में मसीह में विश्वास किया है और उसने यह धार्मिकता प्राप्त की है जो ईश्वर देता है, यह सही स्थिति है, तो अनिवार्य रूप से वह व्यक्ति जीवन की नवीनता में चलेगा, पॉल की भाषा का उपयोग करने के लिए। अब प्रमुख खंडों में से एक या अध्याय 3 में महत्वपूर्ण खंडों में से एक दूसरे खंड में, जैसा कि पॉल ने समाधान या पूर्वानुमान का परिचय देना शुरू किया है, अध्याय 3 और छंद 21 से 26 में है, जो कुछ मामलों में कार्य कर सकता है, जैसा कि कुछ लोगों ने इसे लेबल किया है, न केवल रोमनों को पॉल के पत्र के दिल के रूप में बल्कि पॉल द्वारा प्रचारित सुसमाचार के दिल के रूप में भी। यहाँ बताया गया है कि अध्याय 3 में श्लोक 21 की शुरुआत कैसे होती है और यह पूर्वानुमान खंड की शुरुआत है। तो पॉल ने अभी प्रदर्शित किया है कि गैर यहूदी और यहूदी दोनों आज्ञा पालन में विफलता के कारण पाप के तहत दोषी ठहराए गए हैं और अब वह कहते हैं श्लोक 21 से शुरू करते हुए, लेकिन अब कानून के अलावा वह मूसा का कानून है कि धार्मिकता ईश्वर प्रकट हो गया है और कानून और भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रमाणित है। विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से भगवान की धार्मिकता क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि सभी ने पाप किया है और भगवान की महिमा से कम हैं। वे अब मसीह यीशु में मौजूद मुक्ति के माध्यम से एक उपहार के रूप में उसकी कृपा से न्यायसंगत हैं, जिसे भगवान ने प्रायश्चित या प्रायश्चित के बलिदान के रूप में सामने रखा था। श्लोक 25 में आपके अनुवाद थोड़े अलग हो सकते हैं, जिसे भगवान ने प्रायश्चित के बलिदान या अपने रक्त से प्रायश्चित के रूप में सामने रखा है, जो कि विश्वास के माध्यम से प्रभावी मसीह की मृत्यु है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए ऐसा किया क्योंकि अपनी दिव्य सहनशीलता में उसने पहले किए गए पापों को पार कर लिया था, शायद वे पाप जो पुराने नियम में पुरानी वाचा के तहत किए गए थे। परंतु वर्तमान समय में यह सिद्ध करना था कि वह आप ही धर्मी है और जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है उसे धर्मी ठहराता है। अब मुझे इस खंड पर कई टिप्पणियां करने दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, इसे सुसमाचार के हृदय के रूप में वर्णित किया जा सकता है और कम से कम हृदय एक अर्थ में पॉल के पत्र का हृदय। ऐसा लगता है कि बाकी अधिकांश रोमन 3:21-26 के महत्व और निहितार्थ को उजागर करेंगे वे छंद जो मैंने अभी पढ़े हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान दें कि पॉल कानून से अलग धार्मिकता प्रदान करता है। इसे शायद दोबारा समझना होगा या पुराने और नए दोनों नजरिए से समझा जा सकता है। अर्थात यह धार्मिकता कानून के पालन से, कानून का पालन करने की मानवीय क्षमता से नहीं आती है, और न ही यह धार्मिकता है। फिर नए दृष्टिकोण के अनुसार यह केवल यहूदियों तक ही सीमित नहीं है। लेकिन अब चूंकि इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है, यह अन्य जातियों के लिए भी खुला है। तो एक ऐसी धार्मिकता है जो अब उपलब्ध है, जो मोज़ेक कानून की आज्ञाकारिता से जुड़ी नहीं है। और फिर लगभग हर समय जब पॉल कानून शब्द का उपयोग करता है, शायद कुछ उदाहरणों को छोड़कर, वस्तुतः हर बार जब आप पॉल को कानून शब्द का उपयोग करते हुए देखते हैं, तो वह मुख्य रूप से पुराने नियम के कानून, मूसा के कानून का उल्लेख कर रहा होता है। और यहाँ वह कहते हैं कि यह अब धार्मिकता में भगवान के सामने खड़े होने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। इसलिए यहूदी और अन्य जाति इसमें समान स्तर पर भाग ले सकते हैं। पॉल जिन शब्दों का उपयोग करता है उनमें से एक, वास्तव में दो शब्द हैं जिनका उपयोग पॉल यह वर्णन करने के लिए करता है कि यीशु मसीह ने इस धार्मिकता को प्रदान करने में क्या किया है। अब यह मान लिया गया है, फिर से हम वही मान रहे हैं जो पॉल ने पहले 3 अध्यायों में तर्क दिया है। पॉल मान रहा है कि हर किसी ने उसके तर्क का पालन किया है कि हर कोई गैर यहूदी और यहूदी पाप के बंधन में है। हम सभी पाप के दोषी हैं और इसलिए पाप और मृत्यु के बंधन में हैं। और इसलिए संभवतः तर्क यह है कि उन्हें इससे बचाया जाना चाहिए या उस स्थिति को संबोधित करने की आवश्यकता है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। और पॉल का समाधान यह है कि यह धार्मिकता द्वारा किया गया है जो यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से आता है। तो धारणा यह है कि यीशु मसीह की मृत्यु पहले 3 अध्यायों में पाप की इस समस्या से संबंधित है। और जिस तरह से पॉल इसे दिखाता है वह दो रूपकों का उपयोग करके हैं। मैंने वास्तव में यहाँ केवल एक को सूचीबद्ध किया है, लेकिन पहला श्लोक 24 में है, मुक्ति शब्द। पॉल का कहना है कि यीशु की मृत्यु हमें मुक्ति दिलाती है या उनके लोगों को मुक्ति प्रदान करती है जिनका वर्णन पहले 3 अध्यायों में पाप के तहत निंदा करने वाले और पाप के बंधन में बताया गया है। तो यीशु मसीह की मृत्यु मुक्ति प्रदान करती है। यह रूपक शायद वह है जैसा कि अधिकांश ने माना है, गुलामी या बाजार की कल्पना से आता है, और वह है यीशु की मृत्यु को इस रूप में देखा जाता है। दो विचार हो सकते हैं। प्रमुख विचार यह है कि यह गुलामी से मुक्ति दिलाता है। इसलिए यीशु की मृत्यु को हमें गुलामी से मुक्त करने के रूप में देखा जाता है। इस मामले में यह भौतिक स्वामियों की गुलामी नहीं है, बल्कि पाप को उस रूप में देखा जाता है जिसके हम बंधन में हैं। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु हमें छुटकारा दिलाती है या मुक्ति प्रदान करती है। श्लोक 24 में वह कहते हैं कि मसीह यीशु में जो मुक्ति है वह गुलामी से मुक्ति है, बचाव है। और यह संभवतः पुराने नियम में निर्गमन की भी याद दिलाता है। मिस्रवासियों द्वारा पलायन को बंधन और गुलामी से मुक्ति या मुक्ति के रूप में देखा गया था। तो अब बंधन से मुक्ति पॉल वर्णन करता है, पाप का बंधन है जिसका वर्णन उसने पहले 3 अध्यायों में सभी के अंतर्गत किया है। तो यह पहली छवि या रूपक है मुक्ति। दूसरा श्लोक 25 में फिर से यदि किसी के पास अनुवाद खुला है तो क्या आपके पास प्रायश्चित है? क्या आपके अनुवाद में किसी को प्रायश्चित है? अब आपको वह उतना नहीं मिलता। आप में से अधिकांश के पास प्रायश्चित का बलिदान होगा। इसका कारण यह है कि ये दोनों अनुवाद ग्रीक शब्द पर आधारित हैं और इसका वास्तव में क्या अर्थ है इस पर थोड़ा विवाद है। प्रायश्चित के बलिदान के विचार का सीधा सा मतलब है कि यीशु की मृत्यु पाप को दूर ले जाती है या दूर कर देती है। तो यहाँ श्लोक 25 में यह कहकर कि यीशु की मृत्यु प्रायश्चित का बलिदान था, फिर से यह पुराने नियम की कल्पना कह सकता है कि यीशु की मृत्यु अब पाप से शुद्ध हो जाती है या पाप को दूर कर देती है। लेकिन दूसरी संभावना यह है कि कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि हमें श्लोक 25 का अनुवाद करना चाहिए क्योंकि यीशु की मृत्यु एक प्रायश्चित थी। अब यह वह शब्द नहीं है जिसे हम अपनी सामान्य शब्दावली में उपयोग करते हैं। संभवतः प्रायश्चित का बलिदान वास्तव में नहीं है, लेकिन हम में से अधिकांश ने अपने धर्मशास्त्रीय प्रवचन में प्रायश्चित शब्द सुना है। लेकिन प्रायश्चित वह है जो कुछ मायनों में मानचित्र से बाहर हो गया है और यीशु की मृत्यु का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग करना उतना आम नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब है? प्रायश्चित का विचार यह है कि यीशु की मृत्यु परमेश्वर के क्रोध की संतुष्टि थी या वास्तव में उसे टाल दिया गया था और दूर कर दिया गया था। और इसमें समर्थन है कि यदि आप यहाँ इस खंड में वापस जाते हैं, श्लोक 18 शुरू होता है, अब भगवान का क्रोध सभी पापों और मानवता के खिलाफ प्रकट होता है। तो उनकी प्रतिक्रिया के रूप में भगवान के क्रोध का विचार एक पवित्र भगवान के रूप में पाप के प्रति उनकी प्रतिक्रिया रोमियों की पुस्तक में मौजूद है। इसलिए यह संभावना है कि प्रायश्चित के बलिदान के साथ साथ पॉल संभवतः प्रायश्चित के संदर्भ में भी सोचता है। यानी अध्याय 1 श्लोक 18 में ईश्वर का क्रोध प्रकट किया गया है। अब यीशु की मृत्यु परमेश्वर की मांगों और उनकी पवित्र मांगों को संतुष्ट करके अब उस क्रोध को मानवता से दूर कर देती है। तो प्रायश्चित के पीछे यही विचार है। यदि आपके पास कोई अनुवाद है जो प्रायश्चित कहता है, और फिर मैं नहीं जानता कि हमें इनमें से किसी को भी खारिज करना होगा कि यीशु की मृत्यु प्रायश्चित का बलिदान है। यह पाप को दूर करता है, यह पाप को शुद्ध करता है, लेकिन एक अर्थ में यह एक प्रायश्चित भी है जिसमें यह पाप के लिए प्रायश्चित का बलिदान प्रदान करके भगवान के क्रोध को रोकता है और दूर करता है। यहाँ इस शब्द के पीछे एक और विचार भी है जिसका अनुवाद प्रायश्चित या प्रायश्चित के बलिदान के रूप में किया जा सकता है। सेप्टुआजेंट में जो पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद है, पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा अलेक्जेंडर के समय को याद करें। यूनानी संस्कृति और यूनानी भाषा, जिसे हेलेनिज्म कहा जाता है, का प्रसार करने वाले जनरल अलेक्जेंडर को देरसबेर पुराने नियम के यूनानी अनुवाद की आवश्यकता पड़ी जो मूल रूप से हिब्रू में लिखा गया था। उस यूनानी अनुवाद को विभिन्न कारणों से आमतौर पर सेप्टुआजेंट के रूप में जाना जाता है, या 70 के लिए रोमन अंक LXX। और मैं उन सभी कारणों पर नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद सेप्टुआजेंट वास्तव में उसी शब्द का उपयोग करता है जो पॉल यहाँ वाचा के संदूक पर दया सीट के लिए करता है, जो पाया गया था मंदिर, वह स्थान जहाँ प्रायश्चित होता है। तो यह संभव है कि पॉल के मन में यह तथ्य भी था कि यीशु मसीह, जो मंदिर में वाचा के संदूक पर दया सीट पर हुआ था, अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरा हो गया है। तो यह पॉल के कहने का एक और तरीका है कि यीशु मसीह पुराने नियम की सभी छवियों, वादों और सभी घटनाओं वगैरह को पूरा करते हैं। इसलिए फिर से शायद मुझे नहीं लगता कि हमें उनमें से किसी को भी खारिज करना होगा। फिर से मैं एक घटिया विचारक नहीं बनना चाहता और कहता हूँ, ठीक है, मैं निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए मैं उन सभी को ले लूंगा। यह भी उचित नहीं है, लेकिन वे सभी धारणाएं निश्चित रूप से फिट बैठती हैं और उनकी पृष्ठभूमि पुराने नियम और यहां तक कि व्यापक यूनानी दुनिया में भी है। प्रायश्चित के बलिदान के रूप में यीशु की मृत्यु यह पाप को दूर करती है, यह पाप को मिटा देती है, लेकिन यह एक प्रायश्चित भी है। यह परमेश्वर के क्रोध को संतुष्ट करता है, यह इसे टालता है, इसे मानवता से दूर करता है, और साथ ही यीशु दया का स्थान है, वह स्थान जहां यह प्रायश्चित होता है। वह पुराने नियम की बलि प्रणाली की पूर्ति है, ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अध्याय 3 श्लोक 21 से 26 में सुसमाचार खंड का यह मर्म केवल यीशु और उसकी मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि यह ईश्वर और उसके न्याय और ईश्वर की धार्मिकता या न्याय के बारे में भी है। ध्यान दें, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, मुझे छंद 25 और 26 फिर से पढ़ने दें। इसलिए भगवान ने यीशु को आगे रखा, उन्होंने उसे प्रायश्चित, प्रायश्चित और दया सीट के बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि भगवान की दिव्य सहनशीलता में वह पार हो गया था पहले किए गए पाप। परंतु यह वर्तमान समय में यह सिद्ध करने के लिए था कि वह आप ही धर्मी है, वह आप ही धर्मी है, और जो यीशु पर विश्वास रखते हैं उन्हें धर्मी ठहराता है। इसलिए पॉल यह सवाल उठा रहा है कि यीशु ने पापियों को सही करने के लिए क्या किया जो पाप के बंधन में थे, लेकिन भगवान उन्हें कैसे धर्मी बनाते हैं। खैर, वह यीशु मसीह के माध्यम से ऐसा करता है, परंतु यह परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। और पद 26 में पौलुस जिस प्रश्न का अनुमान लगाता प्रतीत होता है वह यह है कि परमेश्वर इन लोगों को धर्मी कैसे बना सकता है, फिर भी वह स्वयं धर्मी और धर्मी कैसे हो सकता है। परमेश्वर पापियों को धर्मी कैसे बना सकता है, फिर भी अपनी पवित्रता और धार्मिकता को कैसे बनाए रख सकता है। मुझे लगता है कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हम स्पष्ट रूप से यह नहीं सोचते हैं कि जब नए नियम और सुसमाचार की बात आती है तो भगवान जो करते हैं वह मानक को कम कर देते हैं। तो मानक असंभव रूप से ऊंचा है। यह पूर्णता, पूर्ण आज्ञाकारिता और परमेश्वर के चरित्र का प्रतिबिंब है। लेकिन पुराने नियम से पता चलता है कि कोई भी इसे माप नहीं सका। तो एक अर्थ में भगवान मानक को कम करते हैं और कहते हैं, इसके बजाय मैं आपको विश्वास और अनुग्रह के आधार पर स्वीकार करूंगा। तो हम आवश्यकताओं को एक तरह से माफ कर देंगे। तो आपको बस ईश्वर की कृपा पर विश्वास और विश्वास करना है और आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो यह ऐसा है जैसे ईश्वर ने मानकों को कम कर दिया है क्योंकि हम उन्हें पुराने नियम में पूरा नहीं कर सके। कोई भी जीवित नहीं रह सकता और माप नहीं सकता। इसलिए भगवान को एक तरह से मानदंड बदलना पड़ा ताकि अब यह कानून और पूर्णता को बनाए रखने पर आधारित न हो, बल्कि अब यह पूरी तरह से भगवान की कृपा और विश्वास पर आधारित हो। पॉल बिल्कुल यही नहीं कह रहा है, वह यह है कि मानकों और मानदंडों में जरा भी बदलाव नहीं किया गया है। यह सिर्फ इतना है कि अब पॉल आश्वस्त है कि उनकी मुलाकात यीशु मसीह के माध्यम से हुई है। यह यीशु मसीह को पाप को दूर करने के लिए एक बलिदान के रूप में प्रदान करने के द्वारा है और ईश्वर द्वारा मसीह को उसके क्रोध को टालने और संतुष्ट करने के लिए एक प्रायश्चित के रूप में भेजने और यह दया का आसन बनने के द्वारा है जहां पाप से निपटा जाता है। उस आधार पर ईश्वर उन लोगों को न्यायोचित ठहरा सकता है जो पाप के बंधन में हैं, स्वयं धर्मी और न्यायी होने से चुके बिना। दूसरे शब्दों में ईश्वर अपने धर्मी चरित्र और अपने पवित्र चरित्र से समझौता नहीं करता है। ईश्वर मानदंड नहीं बदलता या मानक कम नहीं करता। इसके बजाय वह यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से यीशु मसीह को पापों के लिए बलिदान के रूप में प्रदान करके और पाप की समस्या से निपटकर मानक को पूरा करता है। परमेश्वर पापियों को न्यायोचित ठहरा सकता है। यह कुछ मार्टिन लूथर के विचार के केंद्र में था। परमेश्वर उन लोगों को न्यायोचित ठहरा सकता है जो पाप के बंधन में हैं, अध्याय 1-3, फिर भी परमेश्वर अभी भी न्यायकारी है। वास्तव में यदि ईश्वर ने मानकों को कम कर दिया या यदि ईश्वर ने मानदंड बदल दिए या इसे आसान बना दिया तो वह ईश्वर नहीं रहेगा। वह अपने न्यायपूर्ण और धार्मिक चरित्र के अनुसार कार्य करना बंद कर देगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है। परमेश्वर ने अभी भी अपनी धार्मिकता बनाए रखी है और अपने धार्मिक चरित्र के अनुसार न्यायपूर्वक कार्य किया है, फिर भी वह अभी भी धर्मी घोषित कर सकता है या उन लोगों को धर्मी बना सकता है जो पाप के बंधन में हैं। क्यों? प्राथमिक कारक यीशु मसीह का व्यक्तित्व है और क्रूस पर उनकी बलिदान मृत्यु, उनकी मृत्यु एक प्रायश्चित के रूप में पुराने नियम की बलिदान प्रणाली की पूर्ति के रूप में। अच्छा, इसलिए इस खंड में ईश्वर के औचित्य के बारे में इतना ही कहना है कि ईश्वर इस तरह से मोक्ष प्रदान करता है जो अपने न्याय और धार्मिकता और अपने स्वयं के चरित्र से समझौता नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, उस अनुभाग के बारे में कोई प्रश्न? मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण अनुभाग है। खैर, हमने धार्मिकता या औचित्य शब्द का कई बार उल्लेख किया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रोमनों में कई बार आता है और औचित्य शब्द रोमियों और गलातियों की पुस्तक में भी एक महत्वपूर्ण शब्द है और इसलिए यह पूछना महत्वपूर्ण है कि औचित्य का क्या मतलब है, क्योंकि अक्सर जब, कम से कम आज हमारी अंग्रेजी भाषा में, अगर हम किसी चीज को उचित ठहराने का उल्लेख करते हैं तो हम अक्सर कुछ करने का औचित्य या कारण प्रदान करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए यदि मैं अपने व्यवहार को उचित ठहराता हूँ तो मैं प्रदर्शित करता हूँ कि ऐसा करने में मैं सही क्यों हूँ या अपने व्यवहार के लिए कारण या तर्क प्रदान करता हूँ। लेकिन रोमनों में औचित्य या धार्मिकता शब्द अक्सर कानूनी पृष्ठभूमि को दर्शाता है और कुछ अन्य पृष्ठभूमियां भी हो सकती हैं, जैसे पुराने नियम की वाचा। लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि पॉल जिस प्राथमिक पृष्ठभूमि की ओर आकर्षित होता है वह अदालत कक्ष है, पुराने नियम और ग्रीको रोमन दुनिया दोनों की कानून अदालत, और वह यह है कि ईश्वर को पूरी दुनिया और मानवता के न्यायाधीश के रूप में चित्रित किया जा रहा है। फिर से मानवता ने इस ईश्वर के साथ अपने रिश्ते का उल्लंघन किया है, मानवता ने ईश्वर के खिलाफ पाप किया है और इसलिए वह ईश्वर के सामने दोषी है जो दुनिया का न्यायाधीश है। और इसलिए भगवान, फिर हमने कहा कि भगवान को उस अधिकार को बनाने का एक रास्ता खोजना होगा और उन लोगों को उनके पापों से मुक्त करने के लिए एक सही रिश्ते में प्रवेश करने का एक तरीका प्रदान करना होगा, फिर भी खुद को सही ठहराने के लिए अपनी धार्मिकता को बनाए रखना होगा। और इसलिए इसका अर्थ है, विशेष रूप से जब यह भगवान के लोगों को संदर्भित करता है, तो औचित्य का अर्थ किसी को सही रिश्ते में घोषित करना या किसी को निर्दोष घोषित करना या दोष सिद्ध करना है। तो पॉल का विचार यह है कि जिन लोगों ने पाप किया है और जो अध्याय 1 से 3 में पाप के बंधन में हैं, उन्हें वास्तव में धर्मी या न्यायसंगत घोषित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें निर्दोष घोषित किया जाता है या उन्हें दोषी ठहराया जाता है। उस पुष्टि का एकमात्र आधार क्रूस पर ईसा मसीह का कार्य है, और मैं उनके पुनरुत्थान पर भी बहस करूंगा। कभी कभी औचित्य को यीशु के पुनरुत्थान से भी जोड़ा जाता है, इसलिए उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हम दोष मुक्त हो जाते हैं, हमें निर्दोष घोषित कर दिया जाता है और भगवान के सामने एक सही स्थिति, एक सही रिश्ते में प्रवेश करते हैं। इसके साथ कुछ अन्य बारीकियां भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य रूप से पॉल को रोमियो में औचित्य और धार्मिकता की भाषा के बारे में यही पता चल रहा है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और 1 कुरिन्थियों की ओर बढ़े, फिर से संक्षेप में कहें तो अधिकांश रोमियों के दिल में एक प्रदर्शन है कि यहूदी और गैर यहूदी अब भगवान के सच्चे लोग बन सकते हैं और कानून अब कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो यहूदी और अन्य जाति दोनों ही परमेश्वर के सच्चे अनुबंधित लोगों से संबंधित हो सकते हैं। फिर भी यह इस तथ्य का मुद्दा भी उठाता है कि यहूदी और गैर यहूदी दोनों पाप के कारण ईश्वर के सामने दोषी होने के बावजूद कानून का पालन करने के आधार पर नहीं, बल्कि क्रूस पर बलिदान के रूप में यीशु मसीह के कार्य के आधार पर दोषी ठहराए जा सकते हैं और धर्मी घोषित किए जा सकते हैं, प्रायश्चित प्रायश्चित के रूप में। और बाकी रोमन केवल इसका अर्थ बताते और समझाते हैं। अब रोमन्स आपको पॉल के विचारों से परिचित कराने के लिए एक अच्छी जगह है, यानी ऐसी कई चीजें हैं जो हमें रोमनों में मिलती हैं जो वास्तव में पॉल के पत्रों में कहीं और दिखाई देंगी, और मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें सही ढंग से समझ सकें तो जब वे कहीं और दिखाई देंगे तो हमें उन्हें समझने में आसानी होगी। और यह पहला है, यह आपके नोट्स में एक और भ्रमण है, और कहने वाली पहली बात यह है कि पॉल वास्तव में नए नियम का बाकी हिस्सा है, लेकिन चूंकि हम पॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, पॉल पहले से ही यीशु के साथ इस विचार को साझा करता है, लेकिन अभी तक नहीं। याद रखें, हमने राज्य के संबंध में उस बारे में बात की थी, और फिर मैंने कहा कि यदि आप मेरी कक्षा में सो रहे हैं तो भगवान न करे कि आप कभी ऐसा करने के बारे में सोचें, लेकिन यदि आप थे और मैंने आपको जगाया और आपसे एक प्रश्न पूछा, यदि आपने पहले ही कहा है लेकिन अभी तक नहीं, तो आप शायद मेरे पास सही होने की लगभग 90% संभावना है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने इसे महत्वपूर्ण बना दिया है, बल्कि इसलिए कि यह नए नियम में सब कुछ है। नया नियम यह मानता है, लेकिन हमने यीशु के साथ कहा, जब यीशु ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया तो वह वास्तव में उस राज्य की पेशकश कर रहा था जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भविष्य में की थी। यीशु मसीह ने अपने पहले आगमन पर इसकी पेशकश की और कहा कि पुरुष और महिलाएं भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और भगवान के शासन का अनुभव कर सकते हैं, जिसका वादा डेविड को अभी वर्तमान में किया गया था। फिर भी यह केवल आंशिक रूप से ही आया है, यह अभी भी अपनी भावी परिणति की प्रतीक्षा कर रहा है, यह अभी तक अपनी पूर्णता और पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। तो जो पहले से ही सच है लेकिन केवल आंशिक रूप से, और जो अभी भी पूर्ण रूप से सामने आना बाकी है, के बीच तनाव, वह तनाव पॉल में भी हर जगह उभर आता है। यीशु मसीह के माध्यम से जो पहले ही पूरा किया जा चुका है और जो अब एक वर्तमान वास्तविकता है, लेकिन जो भविष्य में अभी तक अपनी पूर्णता और पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया है, के बीच तना। इसलिए उदाहरण के लिए एक और कारण है कि मैंने आपको रोमियो 6 पढ़ा। अगर मैं वापस जा सकता हूं और रोमियो 6 को फिर से पढ़ सकता हूं, तो पॉल में तनाव का पहले से ही वह पक्ष संदर्भित करता है जो यीशु मसीह से संबंधित होने के कारण हमारे बारे में पहले से ही सच है। और कभी कभी पॉल कुछ बिल्कुल निरपेक्ष बयान देता है। रोमियो 6 पर वापस जाने के लिए ध्यान दें कि वह कैसे शुरू करता है। वह कहता है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुतायत से हो? अब ये सुनो। वह कहता है, कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए उसमें कैसे जीवित रह सकते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया? अब यह एक पूर्ण कथन है। पॉल कहते हैं, हम पाप के लिए मर गए हैं। लेकिन वह ऐसा कैसे कह सकता है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह तनाव के पहले से ही मौजूद पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। मसीह से संबंधित होने के कारण हम पहले ही पाप के लिए मर चुके हैं। मसीह की मृत्यु में भाग लेने से हम पहले ही पाप की मृत्यु का अनुभव कर चुके हैं। फिर भी जाहिर है, मैं अभी भी जीवित हूं। शारीरिक रूप से मैं अभी भी जीवित हूं। और पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग स्वीकार करेंगे कि हम अभी भी पाप करते हैं। तो तनाव का अभी तक नहीं हुआ पक्ष वह है जो हमें अभी भी बनना बाकी है, जो हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और यह परिलक्षित होता है। तो ध्यान दीजिए, पॉल एक ओर तो यह कह सकता है कि हम जो पाप के लिए मर गए अब कैसे उसमें रह सकते हैं। यह एक पूर्ण कथन है। ऐसा लगता है जैसे यह पूर्णता से कम नहीं है। हम पाप के लिए मर चुके हैं और हम इसमें नहीं रह सकते। लेकिन अब कुछ छंदों के बाद पॉल क्या कहता है उसे सुने। श्लोक 11 से शुरू करते हुए आपको अपने आप को पाप के लिए मृत और ईश्वर के लिए जीवित समझना चाहिए। इसलिए पाप को अपने नश्वर शरीर पर हावी न होने दें। मैंने सोचा कि उसने कहा था कि हम पहले ही पाप के लिए मर चुके हैं। अब उसे हमें पाप को हावी न होने देने की आज्ञा क्यों देनी पड़ी? यह इसी तनाव का हिस्सा है। तो पॉल बात कर सकता है कि हम मसीह से संबंधित होने के कारण पाप के लिए मर गए हैं। वह पहले से ही है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं। अभी तक भविष्य की परिणति अभी तक नहीं आई है। इसलिए अभी तक यह आवश्यक नहीं है कि पॉल हमें ये आदेश दे। हाँ, हम पहले ही पाप के लिए मर चुके हैं। लेकिन अभी तक नहीं होने के कारण, क्योंकि यह अभी भी एक संपूर्ण वास्तविकता नहीं है, पॉल कहते हैं, लेकिन आपको अभी भी पाप को मौत के घाट उतारना होगा। आप अभी भी पाप से संघर्ष करते हैं। आप अभी भी इस वर्तमान दुष्ट युग में रहते हैं। आप अभी भी ऐसे समय में रहते हैं जब परमेश्वर का राज्य अपनी संपूर्णता में नहीं आया है। इसलिए आपको अभ्यास में पाप को मौत के घाट उतारना होगा। इसलिए यह विचार पॉल के सभी पत्रों में सामने आएगा और मैं शेष नए नियम का भी सुझाव दूंगा। और फिर यह आपको कुछ विरोधाभासी या स्पष्ट रूप से विरोधाभासी बयानों को समझने में मदद करता है। फिर से पॉल कुछ ऐसा कह सकता है जैसे आप पाप के लिए मर गए हैं और आप मसीह के साथ बड़े हुए हैं। खैर, फिर वह कैसे कह सकता है कि आपको पाप को मौत के घाट उतारना होगा और आपको ऐसे जीना होगा जैसे कि आप जीवन के नएपन में चल रहे हों? यह पहले से ही उसका हिस्सा है, लेकिन अभी तक तनाव नहीं है। इससे संबंधित एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि पॉल मानवता को समझते हैं और वास्तव में हमारे अस्तित्व को दो क्षेत्रों के संदर्भ में समझते हैं। ये वृत्त किसी भौतिक स्थान या भौगोलिक या मानचित्र पर किसी बिंदु या ऐसी किसी चीज को इंगित करने के लिए नहीं है जिसे कोई पहचान सके। ये वृत्त केवल एक वास्तविकता या प्रभाव क्षेत्र, नियंत्रण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं। पॉल समझता है और फिर से आप यहाँ पहले से ही लेकिन अभी तक काम नहीं कर रहे लोगों के बीच तनाव देख सकते हैं। पॉल मूल रूप से समझता है कि दो मानवताएं हैं या मानवता को इन दो क्षेत्रों या प्रभाव या नियंत्रण के दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। एक क्षेत्र जिसे पॉल अक्सर बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा आत्म या बूढ़ा आदमी कहता है, कुछ अनुवादों में ऐसा हो सकता है। बूढ़ा आदमी मूल रूप से इस बात का संदर्भ है कि हम कौन हैं। आदम पहला इंसान है जिसने हमें पाप में डुबाया। रोमियो अध्याय 5 पढ़े जहां पॉल इस पर चर्चा करता है। एडम में हम मानवता से संबंधित हैं। हम एक अस्तित्व का हिस्सा हैं, एक क्षेत्र है, एक प्रभाव या शक्ति का क्षेत्र है जो हमें नियंत्रित करता है। इस क्षेत्र पर पाप और मृत्यु का प्रभुत्व और नियंत्रण है। दिलचस्प बात यह है कि जब हम गलाटियंस के पास पहुंचेंगे तो हम इसका और अधिक उल्लेख करेंगे। पॉल पुराने नियम के कानून को भी यहां रखेगा, हालांकि पॉल यह स्पष्ट करना चाहता है कि कानून में कोई गलती नहीं है। कानून बुरा या पापपूर्ण नहीं है। मानवता ने इसके साथ यही किया है। लेकिन जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह पाप और मृत्यु है। इसलिए पूरी मानवता एडम के पुराने स्व में है। जब पॉल पुराने व्यक्ति के बारे में बात करता है तो यह मेरे अस्तित्व का कुछ औपचारिक हिस्सा नहीं है या ईसाई बनने से ठीक पहले मैं कौन था। बूढ़ा व्यक्ति वह है जो मैं आदम के क्षेत्र में था और उसके प्रभाव में था और पाप और मृत्यु का प्रभुत्व और विशेषता थी। फिर जब पॉल नए व्यक्ति या नए स्व या नए मनुष्य के बारे में बात करता है तो इसका तात्पर्य अब एक नए क्षेत्र में प्रभाव और शक्ति के एक नए क्षेत्र में स्थानांतरित होने से है जहां मसीह प्रमुख है। इसकी विशेषता एक धार्मिक जीवन और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और शक्ति है। तो पॉल इन दो समावेशी मानवता को उनके दो संबंधित प्रमुखों एडम और क्राइस्ट के साथ समझता है। आदम की आदम के अधीन मानवता पाप और मृत्यु की शक्ति के दायरे और क्षेत्र के भीतर है। जो लोग मसीह में हैं, वे धार्मिक जीवन के प्रभाव के दायरे और क्षेत्र के भीतर और भगवान की पवित्र आत्मा की शक्ति के अधीन हैं। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पॉल अपने पत्रों के माध्यम से इसके साथ काम करने जा रहा है। पुनः ये दो प्रकार की मानविकी या प्रभाव क्षेत्र हैं। और फिर आप पहले से ही देख सकते हैं लेकिन अभी तक तनाव नहीं है कि पॉल पूर्ण बयान दे सकता है। हम पहले ही इस दायरे में स्थानांतरित हो चुके हैं, इसलिए पॉल कह सकता है कि आप पहले ही मसीह में मर चुके हैं। आप पहले से ही धर्मी हैं, आप पहले से ही धर्मी हैं, आपने पहले ही जीवन प्राप्त कर लिया है। हालांकि अभी भी एक भावना है जिसमें यह प्रभाव डालता है। और इसलिए पॉल वहां कहता है, लेकिन आपको अभी भी मौत की सजा देने की जरूरत है, यह अभी तक हिस्सा नहीं है। यह एक अर्थ में यह पूरी तरह से सटीक नहीं है, लेकिन एक अर्थ में स्थानांतरण को पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी स्थानांतरण पूर्ण या पूर्ण नहीं हुआ है और यही कारण है कि हम अभी तक नहीं हैं। यही कारण है कि आदेश अभी भी आवश्यक हैं। इसलिए पुराने व्यक्ति नए व्यक्ति को दो क्षेत्रों, प्रभाव के दो क्षेत्रों के रूप में देखा जाना चाहिए जिनमें एडम और क्राइस्ट प्रमुख हैं और इन विशेषताओं की विशेषता है जो हावी हैं। दूसरा तरीका, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि मसीह में होने का क्या मतलब है। पॉल के सभी पत्रों में सबसे आम अभिव्यक्तियों में से एक मसीह या उसमें है। पौलुस हमारे बारे में बात करता है कि हम उसमें हैं, हम मसीह में न्यायसंगत हैं, हमें मसीह में उद्धार मिला है। ईसाइयों के बारे में कहा जाता है कि हम उनमें हैं, हम मसीह में हैं। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है इस क्षेत्र के नियंत्रण में या इस क्षेत्र के भीतर होना जिसका प्रमुख मसीह है। मुझे लगता है कि पॉल का मुख्य रूप से यही मतलब है जब वह कहता है कि हम मसीह में हैं, हम अब आदम में नहीं हैं। हम अब इस दायरे से संबंधित नहीं हैं, लेकिन अब हम इस दायरे से संबंधित हैं जहां मसीह इसका प्रमुख है। इसकी विशेषता एक धर्मी जीवन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। इस तनाव को फिर से देखने का दूसरा तरीका संकेत और अनिवार्य के बीच का तनाव है। सूचक एक बार फिर पहले से ही अनुरूप होगा। संकेत वे कथन और दावे हैं जो पौलुस ने इस बारे में दिए हैं कि हम मसीह में कौन हैं। फिर से हम मसीह में हैं, हम पाप के लिए मर गए हैं। हम पहले ही न्याय संगत हो चुके हैं, हम पहले ही बचाए जा चुके हैं, हम पाप के लिए मर चुके हैं, हम पहले ही मसीह में नए जीवन की ओर बढ़ चुके हैं। वे पूर्ण कथन हैं जो वर्णन करते हैं कि इस तथ्य के आधार पर क्या सत्य है कि हम मसीह में हैं, कि हम मसीह के हैं। अनिवार्यताएं नैतिक निषेधाज्ञा और आदेश हैं। पॉल अनिवार्यता देता है, हालांकि यह दर्शाता है कि हम अभी तक क्या नहीं बने हैं या हमें मसीह में अभी तक क्या बनना है। यह तनाव का अभी तक हिस्सा नहीं है। फिर से रोमियो 6 पर वापस जाएं। यहां पर फिर से संकेत दिया गया है कि पूर्ण कथनों और दावों को स्पष्ट रूप से देखें कि हम जो पाप के लिए मर गए हैं वे अब और कैसे जीवित रह सकते हैं। तो हम पाप के लिए मर चुके हैं और अब हम पाप में नहीं रहते हैं। फिर पौलुस कहता है, यदि हम उसकी मृत्यु में उसके साथ एक हो गए हैं तो उसके पुनरुत्थान में भी हम निश्चित रूप से उसके साथ एक हो जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना स्व, यह वाक्यांश पुराना स्व है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना स्व क्रूस पर चढ़ाया गया था। आपने उस पूर्ण कथन पर गौर किया है कि पुराने स्व को मौत के घाट उतार दिया गया है। यह उसके साथ सूली पर चढ़ने का काल है। तो वह पाप का शरीर है। मैं पुराने स्व को बूढ़े आदमी को कहने का एक और तरीका सोचता हूं ताकि पाप का शरीर नष्ट हो जाए। तो क्या आपने यह निरपेक्ष भाषा सुनी है कि हमारा पुराना स्व जो हम आदम में हैं, आदम के नियंत्रण के क्षेत्र और दायरे में है और पाप और मृत्यु नष्ट हो गए हैं। हालांकि इसे खत्म कर दिया गया है, इसलिए ये पूर्ण कथन है और पॉल कहते हैं और हम भी मसीह के साथ ही पाले गए हैं। तो वे पूर्ण कथन हैं, लेकिन फिर पॉल पलटेगा और उन्हें फिर से योग्य बनाएगा जो कि सांकेतिक था। इसलिए यह आवश्यक है कि पाप को अपने नश्वर शरीर पर हावी न होने दें। फिर यदि हम पाप के लिए मर गए हैं तो पॉल को ऐसा क्यों कहना पड़ेगा? यह सांकेतिक अनिवार्यता या पहले से ही लेकिन अभी तक नहीं के बीच उस तनाव पर वापस आ गया है। पॉल फिर कहता है, अब अपने सदस्यों को धार्मिकता के साधन के रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत न करें, यही अनिवार्य है। हमारे पास अभी तक क्या है? तो हाँ, हम एक और पाप के शरीर में पाप करने के लिए मर चुके हैं। पुराना मैं नष्ट हो गया है और हम मसीह के साथ जुड़कर नए जीवन की ओर बढ़ गए हैं। लेकिन यह अंततः और पूर्ण रूप से अपने संपूर्ण रूप में घटित नहीं हुआ है, अर्थात अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए पॉल को हमें अनिवार्य पक्ष देना चाहिए कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्ति को मसीह से संबंधित होने के कारण जो सत्य है उसे क्रियान्वित करने में भाग लेना चाहिए और अब उसे अपने जीवन में वास्तविकता बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक नहीं आया है। इसलिए मैंने यह कहा कि ईश्वर और मैथ्यू के राज्य का विचार पहले से ही मौजूद है, पहले से ही एक वास्तविकता है, लेकिन अभी तक अपनी पूर्णता में नहीं आया है। अब हालांकि वह राज्य भाषा का अधिक उपयोग नहीं करता है, लेकिन पौलुस जो कह रहा है वह मसीह में पुराने स्व नए स्व के प्रयोग और उस प्रकार की भाषा के समान ही है। क्या इस बारे में फिर कोई प्रश्न है कि यह पॉल की सोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है? ठीक है, मैं जो करना चाहता हूँ वह प्रारंभिक चर्च के मेल का एक और टुकड़ा खोलना है। हमने अभी अभी रोम के एक चर्च को लिखे एक पत्र को संक्षेप में देखा। अब मैं चर्च के मेल का एक और टुकड़ा खोलकर देखना चाहता हूँ और कोरिंथ शहर के एक चर्च को संबोधित या कम से कम पहला पत्र खोलूंगा। यह कोरिंथ के प्राचीन खंडहरों की एक तस्वीर मात्र है। हालांकि मैं वहां कभी नहीं गया, लेकिन आखिरकार जब मैं वहां पहुंचूंगा तो यह पहली जगहों में से एक है जहां मैं जाना चाहता हूं। लेकिन कोरिंथ, कोरिंथियन चर्च को पॉल के पत्र की पृष्ठभूमि पॉल की मिशनरी यात्राओं में से एक के दौरान अधिनियम अध्याय 18 में है। उन्होंने वास्तव में कोरिंथ शहर में 18 महीने 1.5 साल बिताए। उन्होंने वह समय एक चर्च की स्थापना में बिताया और फिर बाद में किसी समय अब उन्होंने चर्च को एक पत्र लिखा है, क्योंकि उन्हें कई मुद्दों और समस्याओं से अवगत कराया गया है जो कोरिंथ छोड़ने के बाद से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए फिर से उन्होंने इस चर्च को स्थापित करने में 1.5 साल बिताया। अब जाने के बाद और विभिन्न माध्यमों से कोरिंथ में क्या हो रहा है इसकी खबरें सुनने के बाद वह अब बैठता है और कोरिंथ शहर में होने वाली कई समस्याओं और मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक पत्र लिखता है। कोरिंथ शहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। यदि आपको वास्तव में याद है तो यह केवल स्थान है, पहली शताब्दी के दौरान इस समय ग्रीक साम्राज्य दो भागों में विभाजित था। मैसेडोनिया और अचिया दो भागों के दो नाम हैं। जैसे कि यदि आप पुराने नियम के सर्वेक्षण से याद करते हैं तो इसराइल राष्ट्र इसराइल के बीच विभाजित था और यहूदा का राज्य बंट गया। वैसे एक तरह से इस समय ग्रीस में दो राज्य थे, एक मैसेडोनिया, दूसरा अखाया। कोरिंथ अचिया साम्राज्य की राजधानी अचिया था और इसलिए पहली शताब्दी के ग्रीको रोमन दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। कोरिंथ शहर भी शायद हमारे नजरिए से ग्रीको रोमन संस्कृति के सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। यह अपनी संपत्ति के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से कोरिंथ में कुलीन धनी व्यक्तियों की हिस्सेदारी थी। यह बहुत समृद्ध नगर था। नैतिक रूप से कोरिंथ अक्सर कुछ रिपोर्टों के लिए जाना जाता था। प्राचीन रिपोर्टें थोड़ी अतिरंजित हो सकती थीं, लेकिन वह अपनी यौन अनैतिकता के लिए जाना जाता था। अधिकांश अन्य शहरों की तरह इसे अक्सर अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं और पूजा और मूर्ति पूजा और बुतपरस्त मंदिरों में पूजा और कभी कभी इस तरह की चीजों के साथ जोड़ा जाता है। तो लेकिन ज्यादातर मुझे संदेह होगा कि यदि आप पहली शताब्दी के ग्रीको रोमन दुनिया में रहने के लिए जगह तलाश रहे थे तो कोरिंथ आपकी सूची में सबसे ऊपर होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सारी गतिविधि यहीं पर होती थी। कोरिंथ ने इस्तमियन खेलों का दावा किया था जो ओलंपिक खेलों के बाद दूसरे स्थान पर थे। तो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से कोरिंथ वही था जहां वह था। मुझे संदेह है कि यह ऐसी जगह थी जहां ज्यादातर लोग रहने का आनंद लेंगे, लेकिन साथ ही उन सभी तत्वों ने उन मुद्दों को भी उठाया जिनका सामना पॉल को चर्च की स्थापना के बाद करना पड़ा था। हम बस एक क्षण में इस बारे में बात करेंगे कि वे क्या हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आखिरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम बुधवार से शुरू होने वाले पत्र की जाँच करें, वह आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि एक प्रश्न उठाएं कि कितने पत्र हैं क्या पौलुस ने कुरिंथियों को लिखा। ठीक है, आप कहते हैं कि मैं अपने नए नियम को देखता हूँ और मेरे पास पहला और दूसरा कुरिंथियन है। इसलिए उन्होंने कुरिंथियों को दो पत्र लिखे। हालांकि जब आप एक और दो कुरिंथियों को पढ़ते हैं तो नए नियम में हमारे एक और दो कुरिंथियों को ध्यान से पढ़ते हैं, आप जल्द ही पहचान जाते हैं कि शाब्दिक रूप से दो और चार कुरिंथियां हैं, क्योंकि एक कुरिंथियों एक और दो कुरिंथियों दोनों का उल्लेख है। उनमें से प्रत्येक एक अलग अक्षर एक अलग पत्र को संदर्भित करता है जिसका हमारे पास सबूत नहीं है। एक कुरिन्थियों 5:09 उस पत्र को संदर्भित करता है जिसे पॉल ने हमारे प्रथम कुरिन्थियों को लिखने से पहले लिखा था। एक कुरिन्थियों 5:09 अभी कुछ क्षण पहले ही यह मेरे पास था। एक कुरिन्थियों 5:09 में मैंने आपको अपने पत्र में लिखा था कि यौन रूप से अनैतिक व्यक्तियों के साथ संबंध न रखें, और स्पष्ट रूप से चूंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए पॉल उस पत्र का उल्लेख कर रहे हैं जो उन्होंने पहले लिखा था। तो तकनीकी रूप से वह अध्याय 5:1 में जिस पत्र का उल्लेख करता है वह पहला कुरिन्थियन है, और फिर हमारा पहला कुरिन्थियन दूसरा कुरिन्थियन है। अब हमारी बाइबल में दोरे कोरिन्थियंस का पत्र, जिसे हम दोरे कोरिन्थियंस कहते हैं, यह पिछले पत्र को भी संदर्भित करता है जिसे गंभीर पत्र के रूप में जाना जाता है। एक पत्र जिसे पॉल कहता है कि उसने कोरिन्थियंस को लिखा था, लेकिन जाहिर है हमारे पास अब इसका कोई सबूत नहीं है। तो तकनीकी रूप से हमारे पास अध्याय 5:9 में वर्णित पहला कुरिन्थियन है, और फिर हमारा पहला कुरिन्थियन दूसरा कुरिन्थियन है, और फिर तीसरा कुरिन्थियन यह गंभीर पत्र है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, और फिर हमारा दूसरा कुरिन्थियन वास्तव में चौथा कुरिन्थियन है। मेरा कहना यह है कि पहला और दूसरा कुरिन्थियन पॉल और कुरिन्थियों के बीच बहुत व्यापक पत्राचार का हिस्सा है। इससे यह पता लगाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में समस्याएं क्या थीं, वे मुद्दे क्या थे जिनसे शायद पॉल और कुरिन्थियन पहले ही निपट चुके थे। यह है डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर, लेक्चर 15, रोमन्स एंड द इंट्रोडक्शन टू 1 कोरिन्थियंस।